जी
इसद ला इकराह फी दीन, उसका तर्जमा किया जाता है कि दीन में जबर नहीं।
जी जी
जी सर,
इसमें दो ही लफ्ज हैं जी, इसमें दो ही लफ्ज हैं, एक दीन और एक इकराह। इकराह का लफ्ज जो है ये कराहत से है। अल्लाह के निजाम में, दीन का मतलब है सिस्टम, निजाम। अल्लाह के निजाम में कोई नागवारी नहीं होनी चाहिए। जब आप अल्लाह के निजाम में दाखिल हो गए तो नागवारियां खत्म हो जानी चाहिए। यह है इसका असल मफहूम। इकराह का मतलब है कराहत महसूस करना, यानी कि जो बंदा अल्लाह के सिस्टम में चल रहा है वो किसी भी चीज से कराहत नहीं महसूस करता। गौर करें, अल्लाह रब्बे करीम को कोई चीज नागवार गुजरती है? अगर अल्लाह को कोई चीज नागवार गुजरे और अल्लाह रब्बे करीम से मना कर दें तो वो हो सकती है? नहीं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने तख्लीक किया और उसको इख्तियार दिया कि वो दाएं जाए, बाएं जाए या सीधा जाए। सूरह वाकया में ये जो तीन ग्रोह बताए गए हैं, असाबुल शुमाल बाएं वाले, असाबुल यमीन दाएं वाले, और असाबुल साबिकून सबकत ले जाने वाले, नहीं जिनको सबक याद हो गया। यानी ये तीन किस्म के ग्रोह हैं। अल्लाह ने तीनों को छूट दी हुई है। आप बाईं तरफ जाते हैं वहां जहन्नम तैयार किया हुआ है, दाईं तरफ जाते हैं जन्नत तैयार की हुई है। आप अल्लाह की तरफ बढ़ जाते हैं, जन्नत से आगे गुजर जाते हैं तो अल्लाह के मुकर्रब बन जाते हैं। अब ये चॉइस हमारी है, ये है ला इकराह फी दीन। दीन में अल्लाह के सिस्टम में नागवारी को कोई दखल नहीं है। कोई बंदा, हम लोग दूसरों के बड़े नाकद बनते हैं, दूसरों पे तबसरे करते हैं, इसका मफहूम यह है कि हमें कतन बुरा नहीं लगना चाहिए। जो तर्जमा हमारे उलमा ने किया, उलमाए कराम ने किया कि जी दीन में जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये एक सत्य मतलब है, ये शऊरी निज़ाम में तो यही मफहूम है। लेकिन जो इसके इंट्रिंसिक मीनिंग्स हैं, मैंने आपसे वो अर्ज किया कि इकराह यानी ला इकराह, कराहत नहीं है फिर दीन अल्लाह के सिस्टम में। अल्लाह के सिस्टम में आप मिसाल लें, अपने घर की मिसाल लें, अगर एक बात आपको नागवार गुजरेगी तो बेजारी पैदा होगी, कोफ्त होगी और उसके बाद किलकिल शुरू हो जाएगी, उसके बाद मुंह मारी होगी, फिर मारपीट हो जाएगी, हाँ या नहीं? तो नागवारी को अगर हम कंट्रोल करना सीख लें, यानी ना को काट दें तो गवारा कर लें, यानी जो भी कोई कर रहा है ठीक है, वो उसकी अप्रोच है। हमारा जहन इतना बड़ा होना चाहिए कि हमें किसी चीज से कराहत ना महसूस हो, हम अगले की मजबूरी समझ के उससे गुजारा करें कि भाई अब ये है ऐसा तो क्या किया जा सकता है। ये इसका मेरे समझ के मुताबिक तो ये मफहूम बनता है। बात वाज़े हो गई?
जी ठीक हो गया सर,
बहुत शुक्रिया।
सर एक और है कि अल्लाह को उसके गुमान के मुताबिक पाओगे, यानी जन के मुताबिक।
हाँ जी
सर, इसकी भी वजाहत फरमा दे जरा।
अल्लाह ने मतलब है, आप अल्लाह के बारे में जैसा भी गुमान रखते हैं, आप समझते हैं कि अल्लाह बहुत मेहरबान है तो अल्लाह मेहरबान है, आप समझते हैं कि वो बड़ा जब्बार और कहार है, और जब्बार और कहार का मतलब हमने अपनी मर्जी के मतलब भरे हुए हैं उसमें, तो अल्लाह कहता है ठीक है मैं वैसा ही हूँ, जैसा तुम समझोगे मैं वैसा ही हूँ। यानी क्या मतलब हुआ? क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि इंसान की कोई फहम फिक्र की कोई परवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। आप इस बात को तस्लीम करेंगे? इसलिए जो बंदा जितना भी अपने जहन का इस्तेमाल करता है, जो भी गुमान रखता है, अल्लाह कहता है मैं वैसा ही हूं। यानी कि इंसान फर्ज करें, इस वक्त 7.5 अरब आबादी है दुनिया की, तो 7.5 अरब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अल्लाह पे फिट बैठते हैं। अल्लाह इतना बड़ा है, कोई समझता है कि अल्लाह बड़ा जालिम है, वो सिर्फ सजा देता है, अल्लाह कहता है ठीक है, ये उसका जन है। दूसरा बंदा मतलब फकीर कहता है कि अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसको अल्लाह के रूप में सिवाय ममता के दिखता ही कुछ नहीं है। वो अल्लाह को ममता का एक रूप मानता है। ममता की मिसाल दी अल्लाह ने कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। अगर हमारा गुमान ये हो जाए कि अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं अल्लाह की इंतहाई अजीज मखलूक हूं। आप गौर करें कि शैतान ने आपके खिलाफ एक जुमला बोला, अल्लाह ने कहा इसको सजदा करो, उसने कहा मैं नहीं करता। ने कहा क्यों? ने कहा जी मैं इससे अच्छा हूं, आपने मुझे आग से तख्लीक किया, इसको मट्टी से, मैं इसको सजदा क्यों करूं? उसने अल्लाह की हुक्म अदूली की नहीं, वो आपके खिलाफ बोला, अल्लाह ने इस बात पे उसको मर्दूद करार दे दिया। अब हमारा गुमान अगर ये हो कि हम अल्लाह की बड़ी चहेती मखलूक है, तो अल्लाह चाहने वाला बन गया। आप कहें अल्लाह कहार और जब्बार है, तो अल्लाह कहार और जब्बार भी है। देखे ना कितने नाम, 11,500 इस्माइलिया हैं, हमें सिर्फ 99 का पता है। तो ये सारे सिफात जो हैं, ये हमारे गुमान, हमारा गुमान किसी एक या दो सिफात तक पहुंचा, तो अल्लाह कहता है हाँ ठीक है। वाज़े हो गई बात?
जी सर।
शुक्रिया
सर, आपका शुक्रिया। मैं फोन करूं?
जी प्लीज।
हेलो।
जी जी प्लीज।
इंसान की जिंदगी में दो रुख बरसरे अमल हैं।
जी
एक रुख जिंदगी का आला रुख है और दूसरा रुख जिंदगी का असफल रुख है।
जी हाँ।
तो आला रुख कौन सा हुआ, असफल रुख?
बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आसान लफ्जों में अर्ज कर देता हूँ। देखे ना, आप खड़े हैं तो एक आपका सर है, एक पैर है, दो रुख हुए कि नहीं हुए? एक आपका ऊपर की सतह है, एक निचली सतह है, ठीक हो गया? इसी तरह अगर कोई काम अल्लाह के मुताबिक है तो वो आला दर्जे का है, अगर आपके आपकी मर्जी का है या आपकी मर्जी के खिलाफ है तो जाहिर है कि वो असफल है। और करें क्या कहा, जब हर चीज के दो रुख है ना, एक ये कि हम अल्लाह की बात को मखलूक होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह की बात को अव्वलियत दें, ये है आला रुख। और दूसरा रुख क्या है कि हम अव्वलियत ना दें। जब अल्लाह को अव्वलियत नहीं दे रहे तो किसको अव्वलियत दे रहे हैं, या खुद को दे रहे हैं या लोगों को दे रहे हैं? ये असफल रुख हो गया। सिंपल, कोई लंबी बहस नहीं, कोई इसमें पेचीदगी नहीं। देखे ना, मखलूक होने के नाते हमें अल्लाह रब्बे करीम की बात को फॉलो करना है, हाँ या नहीं? अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो आला है, अगर नहीं कर रहे तो असफल है। انسان کو یہ اللہ رب کریم نے خطاب دیا نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین, اسفل السافلین نیچے سے بھی نیچے, یعنی میرے خلاف چلا وہ ایک بات ہے, آگے پھر اس کے بعد اپنی مرضیاں کرنے لگ پڑا, یہ اسفل السافلین ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں نا, ہمارے پاس سب سے بڑی یارڈ سٹک ہے قرآن. قرآن کیا ہے؟ قرآن وحی ہے, اللہ کی بات. اللہ رب کریم نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب ترین بندے پہ پیغام نازل کیا. اس بندے نے کمال کیا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کے اس کو ریکارڈ کر دیا, اور اس طرح ریکارڈ کیا کہ 1450 سال گزر گئے اور اس پیغام کی زیر زبر نہیں بدلی. تو اگر ہم اللہ کی بات کو سمجھنے کے چکر میں پڑ گئے تو بتائیے ہم کہاں ہوئے, اعلیٰ کی طرف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس پہ بات مزید عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے کیے ہوئے کاموں سے مطمئن ہیں, آپ نے سارے کام ایسے کیے کہ یو آر ٹیکنگ پرائڈ ان اٹ کہ جی میں نے جو بھی کام کیا ہے اللہ واسطے کیا ہے, بڑے خلوص سے کیا ہے, ناکام ہوئی ہوں کوئی بات نہیں, کامیاب ہوئی ہوں شکر اللہ کا, اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو آپ کیا ہوئے؟ آپ ذہنی طور پہ کس کیفیت میں ہوئے؟ اعلیٰ کیفیت میں ہوئے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو اپنے کیے پہ غصہ ہی آ رہا ہے کہ یار یہ سب غلط ہو گیا, یہ سب گڑبڑ ہو گئی, یعنی پچھتا رہے ہیں یا برا لگ رہا ہے, تو یہ کیا ہوا؟ اسفل ہوا یا نہ ہوا؟ زندگی کے دو ہی رخ ہیں نا, ایک یہ کہ آپ مطمئن ہیں, آپ نے جو بھی کیا آپ اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہیں تو یہ اعلیٰ ہے. آپ ڈس سیٹسفائیڈ ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کی کاوش میں کوشش میں کمی رہ گئی, تو یہ اسفل ہو گیا. کافی ہے؟ آپ کا شکریہ, ماشاءاللہ اتنا گہرا سوال آپ نے پوچھا ہے. ایک دفعہ تو میری بہت شکریہ. جی جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی
جی, انسان جو ہے 72,000 پرتوں کا مجموعہ ہے, سر اس کی پلیز وضاحت کیجیے.
اب یہ بات دیکھیں, 6 لطائف بتائے جاتے ہیں نا, اگر 72 کو 6 سے تقسیم کریں تو حاصل کیا آیا؟ 12,000. ٹھیک ہے نا, گویا ہر درجے پہ 12,000 کیفیات سے گزرتا ہے انسان, یا گزر سکتا ہے. غور کریں, یعنی وسعت کا یہ عالم ہے. اب یہ بات بتانے کے لیے کہ انسان 72,000 پرت کسے کہتے ہیں, مثلا سوچنا پرت ہے, دیکھنا پرت ہے, سونگنا پرت ہے, محسوس کرنا پرت ہے, کسی کے لیے مخلص ہونا ایک پرت ہے, کسی کے ساتھ بدماشی کرنا یہ بھی ایک پرت ہے, کسی کے ساتھ کا برا سوچنا یہ بھی ایک پرت ہے. تو یہ پازیٹیو نیگیٹو سارے پرت ہیں. हम परतों को समझे नहीं, हमने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये कैफियत हैं। हर कैफियत इंसान पे एक पर्त की तरह वारिद है, वारिद होती है। जब देखे ना, मिसाल की बात है, आप गुस्से में, अब गुस्सा एक पर्त है, जब वो हावी हो गया तो आपको सारी अच्छाई बुराई सारी कवर अप हो जाती है कि नहीं? गौर करें, आप किसी के साथ बहुत अच्छे हैं तो उस वक्त अच्छाई का पर्त गालिब आ गया कि नहीं? तो ये सारी सिफात हैं। 11,500 सिफात कहते हैं ना, तो ये 6 दर्जे हैं उनके। तो नफसी में 11,500 कैफियत, फिर कल्बी में, फिर रूही में, फिर सिरी में, फिर खफी में, फिर अख्फा में, तो ये 72,000 पर तकरीबन बन गए। ठीक हो गया
जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर,
वेलकम।
यासीन की आयत नंबर 51 है, और नुफ़िखा फ़िस्सूरे फ़इज़ा हुम मिनल अज़दाथ इला रब्बिह यंसिलून, यानी जिस वक्त सूअर फूंका जाएगा तो वो फौरन कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे।
जी हाँ,
पर कब्रों में तो ये मादे जिस्म होता है, तो ये
मादे
जिस्म भी उस वक्त निकल जाए।
जरा आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, लव सूर को समझे, स्वाद वाव रे, ठीक है? आपने लफ्ज मुसव्विर देख सुन देखे ना, मुसव्विर में भी तो सूर ही है ना, नीम लगा तो मुसव्विर हो गया। तसव्वुर में भी ये सूर है, गौर करें, सूरत में भी सूर है। ये जो इंसान का खाका है उसमें जब कुछ फूंका जाएगा, यानी आपका रिकॉर्ड बहाल कर दिया जाएगा, क्या असल इंसान जो इस मादी जिस्म के अंदर है, जब वो उसके अंदर वो शऊर फूंक दिया जाएगा, सूरत बन जाएगी। यानी कि हमने तर्जमा कर दिया कि वो एक फरिश्ता है इसराफील, वो एक नरसिंगा की तरह, वो जैसे हिंदू वो भोंपू बजाते हैं उस तरह एक भोंपू बजाएगा। ये हमारी रिवायात है। मैंने अर्ज किया कि इस लफ्ज सूर को तवज्जो से देख लें, वह नफाख तो फूका जाएगा, गौर करें, मिनल अजदास, यानी अजदास यानी जहां आप ठिकाना था वहां से आप उठ खड़े होंगे। अब ये जो हमने तर्जमा किया है कि मादी तौर पे उठेंगे, तो मादी जिंदगी में थोड़े ही वापस आएंगे।
सर यही तो कंफ्यूजन थी,
मैंने इसीलिए लफ्ज आपसे कहा इन दो लफ्जों की जड़ को पकड़ें। सूर के लफ्ज को वाजे हो गया कि सूरत, यानी आपकी जो भी सूरत है उसके अंदर कुछ फूंका जाएगा। क्या फूंका जाएगा? वो जो रिकॉर्ड आपका, जब आप हम फौत होंगे तो वो रिकॉर्ड सील हो गया, ठीक हो गया। जब हमारा रिकॉर्ड बहाल कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड बहाल किया जाएगा, और क्या होगा, हम जिस भी ठिकाने पे थे, अब हम कौन से ठिकाने पे मरने के बाद, अब आप कहते हैं आलम में राफ में, ठीक है। आज ये एक नई मजे की बात सुना देता हूं आपको, ये जो एराफ है ये कहाँ है? हम एक तरफ ये जुमला सुनते हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, सुनते हैं या नहीं
जी?
अब मैं आपसे दो तीन मिसालें अर्ज करता हूँ। आप किसी ऐसे अजीज को जो फौत हो चुका है, जब याद करते हैं तो कहाँ है वो, आपके जहन में है या नहीं? अब मसलन हम कायदे आजम का नाम सुनते हैं, ठीक है, हमारे जहन में है या नहीं? कायदे आजम कहाँ है? हमारे जहनों में है ना, हमारे इनर में है, हाँ या नहीं? अब मोहम्मद अली एक बॉक्सर था, मैंने उसका नाम लिया, देखें आपके जहन में पूरा उसका आ गया कि नहीं, अगर आप उससे वाकिफ हैं। अगर वाकिफ नहीं भी हैं, फर्ज करें कि मैं हजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेता हूं, तो हजूर अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? आम इस्तलाह के मुताबिक तो वो एराफ में है, लेकिन आप गौर करें वो तो हम सब के जहनों में है, हाँ या नहीं? तो एराफ कहाँ हुआ? हमारे अंदर हुआ। वफी अनफुसेकुम, सब कुछ अंदर है, वफी अनफुसेकुम। अफला तुबसिरून, तुम देखते क्यों नहीं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं। और जब अल्लाह एक बात कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम देखते क्यों नहीं? अल्लाह भी हमारे अंदर है और अल्लाह की सिफात भी हमारे अंदर हैं और अल्लाह की कायनात भी हमारे अंदर है। देखें ना, कुरान हजूर कलंदर बाब औलिया का इरशाद है लौह कलम में कि कुरान हमें तीन हस्तियों से मुतारिफ कराता है, ज़ात, सिफात और कायनात। और ये कहा जाता है कि कायनात हमारे अंदर है, ये जुमला आपने सुना है ना?
जी सर।
तो हम सब कहाँ हैं? हम अपने अंदर हैं। ये जो वहां लौह कलम में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ बातिनुल वजूद, इसी को शख्स अकबर कहा है, बातिनुल वजूद का बातिन। अब मेरा एक वजूद है, वो मादी जिस्म में जब तक कैद है मैं अपने जिस्म को मैं कह रहा हूं, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये तो एक लिबास है, इसे मट्टी का लिबास मैंने इस जोन में पहना है, मैं इससे पहले किसी और जोन में था, मैं यहां से जाने के बाद भी तो मैं ही रहूंगा ना, क्यों जी? तो ये जो असल इंसान है वो सब कुछ उसके अंदर है, जब उसको बहाल कर दिया जाएगा, उसकी सूरत में कुछ फूंका जाएगा, तो वो अपने ठिकाने से, ठिकाना अजदास ठिकाना, यहां पे आपने जबरदस्ती कबर कर दिया तर्जुमा, गौर करें
लफ्ज़ से तो गड़बड़ हो जाती है ना।
मैं आपको इसका बड़ा आसान हल अर्ज कर चुका हूँ, दोबारा सुन लीजिए, जब आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें ना, तो ब्रैकेट में दिए हुए अल्फाज को जरा इग्नोर कर दें, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है कि उसको असल मफहूम के बजाय उसने अपनी फिक्र शामिल कर दी है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप ब्रैकेट्स को इग्नोर कर दें तो फिर जोर लगाएं कि असल में अल्लाह क्या कह रहे हैं। देखें, हमने कोशिश करनी है समझने की, समझाना तो अल्लाह ने, फहम अल्लाह ने अता करना है। आप इस जज्बे से कुरान पढ़ें कि मुझे बारे ला तेरी बात समझनी है, मैं काविश कर रही हूं, तू समझा दे मुझे, मुझे बताइए। अल्लाह को कोई अमर माने हैं, कोई चीज रोक सकती है कि वो ना समझाए? हम चाहें तो सही, हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मौलाना का जहन पढ़ रहे हैं। अल्लाह क्या कहता है कि मेरी बात को समझो। आपने देखा इसमें दो लफ्जों को मैंने आपके सामने जसारत की, वजाहत की कि भाई सूर के लफ्ज का मतलब वो मत लें जिसमें नरसिंगा फूंका जाएगा, नहीं आपकी सूरतों में कुछ फूंका जाएगा यानी रिकॉर्ड बहाल किया जाएगा। अल्लाह रब्बे करीम ने कहा ना कि भाई वहां पे ऐसे होगा वो यूं महसूस करेंगे गोया रात को सोए थे सुबह उठ गए। यानी सुबह उठना क्या होता है, शऊर में आना, हाँ या नहीं
जी सर। इसी तरह वो तर्जमा वो भी तो किया जाता है ना एक आयत का कि वो कहेंगे हमारी आराम गाहों से हमें किसने उठा दिया।
आराम गाहों से, अब आप इसे मादी जोन में कबर को समझे या आलम राफ में अपने असल ठिकाने को समझे। वासे हो गई बात।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
माय प्लेजर जी, माय प्लेजर।
सर मेरे सवाल हो गए
जी, और किसी का? जी और किसी का कोई सवाल? जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम।
ये जो मुराकबे की कैफियत होती हैं,
जी जी,
अक्सर लोग कहते हैं कि ये अपनी की बात भेजी जाती है वहाँ से जवाब भेजते हैं, अगर यानी ये पूरी डिटेल वहाँ भेजी जाती है किस तरह, और अगर नहीं तो फिर ये किस तरह क्लियर होता है कि ये कैफियत दुरुस्त मुराकबा किया जा रहा है क्या?
मैं नहीं समझा, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं समझ आई मुझे। मुराकबा करने की कैफियत जो आप लिख के मुराकबा हॉल भेजते हैं उसकी बात कर रहे हैं या वैसे रूहानी तौर पे जो आपकी कैफियत है उनकी बात कर रहे हैं?
जी, मुराकबे की कैफियत अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि वो वहाँ मरकज में अबजी के पास भेजनी चाहिए, लेकिन कैसे भेजें वो फिर इनको लोग कहते हैं किसी को बताएं भी ना और इन कैसे भेजें। वो एक बहन ने पूछा मुझसे कि
असल में बात ये है कि ये सारा निजाम किसका वजह करता है, ये हजूर मुर्शिद करीम का अपना वजह करदा निजाम है, हाँ या नहीं? आप जब कैफियत देखें वो रूहानी तौर पे तो आपकी कैफियत से आशना हैं, वाकिफ हैं, इस बात को आप तस्लीम कर लें, ठीक है? अब आ गई बात कि ये जो लिखत पढ़त, असल में लिखना जो है ये आप अपनी कैफियत अपने रिकॉर्ड के लिए लिख रहे होते हैं। जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं ना, जहन में दोहराते हैं और फिर नविश्त करते हैं यानी लिखते हैं। वो लिखना जो है वो असल में आपके लिए है ताकि आपके शऊर में आ जाए बात। जब आप मुराकबा हॉल भेजते हैं वहां से एक हजूर मुर्शिद करीम उसे एक नजर देखते हैं, अगर कोई जरूरी हदायत देनी हो तो उस पर हदायत दे देते हैं, अदरवाइज लोग इंतजार ही करते रहते हैं, जी मैंने लिख के भेजी कोई नहीं। नहीं, वहाँ पे एक निज़ाम है, हजूर मुर्शिद करीम ने ये निज़ाम वज़ा किया, ठीक ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी टाइमिंग को, अपनी जरूरतों को, सारों को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, मैनेज करना है ना। अब जब मुरीद अगर इस तरह मुराकबा करे कि मैं खुद अब्बा हूं, गौर करें, इससे क्या होगा, आपका बराहे रास्त रब्त कायम होगा हजूर मुर्शिद करीम के साथ। हाँ या नहीं? देखे ना, जब बच्चा बाप को कॉपी कर रहा है, वो बैठा हुआ ये तसव्वुर करे कि मैं अब्बा हूं, क्या कर रहा है, बाप की नकल कर रहा है। नकल करने से क्या होगा, उसको उसकी हजूर मुर्शिद करीम की तर्ज फिक्र मुंतकिल होने लगेगी, फिर रफ्ता रफ्ता जहन मुंतकिल होगा। जब जहन मुंतकिल होने लगेगा तो हजूर मुर्शिद करीम की सलाहियतें उसको मुंतकिल होंगी। जब सलाहियतें मुंतकिल होंगी तो उन सलाहियतों के इस्तेमाल से वो इल्म मुंतकिल होगा जो हजूर मुर्शिद करीम आपको मुंतकिल करना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मुराकबे में मुर्शिद करीम को यूं तसव्वुर करते हैं कि वो सामने बैठे हैं और हम उनके सामने बैठे हैं, बस बैठे बैठे। भाई बैठे नहीं रहे, उनकी किसी बात पे मतलब है, ये सामने बैठे हुए अगर महसूस कर रहे हैं तो उनकी कोई बात याद करें ना, कि वो कुछ बात फरमा रहे हैं। अब इतनी कुतुब लिखी, इतनी तकारीर उन्होंने की, हमें कोई जुमला ही नहीं याद आता कि हम जरा उस जुमले पे गौर करें कि उसका मतलब क्या है, उनके कहने का क्या मतलब है, उन्होंने ये बात क्यों इरशाद फरमाई। इस तरह सोचना भी ठीक है, ये भी मुराकबा ही है ना। अब मुर्शिद करीम में से रोशनियां निकल रही हैं, रोशनी किसे कहते हैं, तसव्वुरात को, यानी उनके तसव्वुरात हमें मुंतकिल हो रहे हैं। ये जो बात हम कही जाती है कि भी आप ये तसव्वुर करें कि मैं मुर्शिद करीम के सामने हूं और उनके जहन से रोशनियां निकल के मेरे कल्ब में जमा हो रही हैं। अब लफ्ज रोशनी को हमने डिसाइफर नहीं किया, क्या किया, अब हमने इन लफ्जों को जो हमने तस्वीर बनाई वही तस्वीर बनी हुई है, बस तसव्वुर तस्वीर बना के बैठे हुए। तो तस्वीर कशी जो है ये तो गलत हो गया। मुराकबा है गौर व फिक्र, उधर आप कहते हैं मुराकबे का हजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में गौर व फिक्र करते थे, गौर व फिक्र का नाम है मुराकबा। यानी हम अगर मुर्शिद करीम की कही हुई इरशाद की गई किसी बात की खोज में लग जाएं, हमारे अंदर तजस्सुस लहराए, तो क्या होगा, हमारा जहन काम करेगा ना। तजस्सुस जो है ये इंसान पे अलूम के दरवाजे खोल देते हैं। अगर हम तजस्सुस ही नहीं कर रहे, बस आंखें बंद करके बैठे हुए और सोए हुए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मुराकबे की पहली कैफियत जो है गनूद है, यानी गनूदगी सी तारी हो जाती है, यानी मादी हवास काम करना बंद कर देते। फिर विरूद है, ये कलंदर शौर किताब में हजूर मुर्शिद करीम ने मुराकबे के ये चार दर्जे बताए हैं ना, गनूद, विरूद, शहूद और फिर मुराकबा। यानी कोई चीज जहन से गुजरती है लेकिन समझ नहीं आती, कोई वारिद होती है लेकिन समझ नहीं आती। जब आप लगातार बैठे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, काविश करते हैं, तो क्या होता है, विरूद जो है शहूद में ढल जाता है, यानी कि मंजर दिखने शुरू हो जाते हैं। अब अगला दर्जा मुराकबा है, यानी कि शहूद जो कुछ नजर आया क्या वो समझ भी आ रहा है या नहीं। मुराकबे के बाद फिर जब आंख खुलती है, आप गौर व फिक्र करना सीखते हैं और गौर व फिक्र करने लगते हैं तो फतह की कैफियत तारी होती है, यानी जहन खुलना शुरू हो जाता है। उसके बाद इससे आगे एक कैफियत है, उसका नाम है सैर। ये जो कुरान में ना सैर फिल अर्द, जमीन में सैर करो, यानी अपनी स्क्रीन का जायजा लो। अर्द स्क्रीन को कहते हैं ना। तो जब हम मुराकबे में अपनी कैफियत से गुजरते हैं, जो भी हम देखते हैं वो अगर हम लिख रहे हैं, लिखना तो आपको याद होगा मैंने जब मुराकबा गुल अर्ज किया था तो अर्ज किया था कि आधा घंटा मुराकबा करें, आधा घंटा लिखें। क्या लिखें? जो भी ख्याल आए। क्यों कहा था? इस लिखने में बड़ी हिकमत है। पहले जमाने में लोग जो थे वो डायरियां लिखते थे, अब हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो डायरी लिखने वाले लोग बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि वो सारे दिन की कारकर्दगी लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीविजिट कर रहे हैं। उन्हें उससे अंदाजा होता था कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। हाँ या नहीं? मेरा ख्याल है काफी है, ये बात वाजे हो गई कि नहीं?
मैं ये तसव्वुर करना कि मैं अब्बा हूँ, अब्बा अक्सर एक्टिविटीज में होते हैं, बिजी होते हैं, वो एक्टिविटीज अब्बा कर हैं या
नहीं? नहीं नहीं, आप अपनी एक्टिविटीज के हवाले से सोचें कि अगर मेरी जगह अब्बा होते तो क्या कर रहे होते। जरा गौर करें, अगर एंगल को आप दुरुस्त रखें ना, अगर आप ये एंगल रखेंगे कि भी मैं अब्बा वाली एक्टिविटीज करूं वो मैंने कहा बच्चा बाप की नकल करता है तो बाप जैसा बन जाता है, बाप बनने की कोशिश ना करे एंगल का फर्क है ना। आप ये महसूस करें कि मेरी जगह अब्बा हूं तो वो कैसे बिहेव करेंगे। बड़ा बारीक एंगल आपने वाजे करवा दिया।
अच्छा ये जो एंगल बारीक वाजे होते हैं, ये जो महसूस होता है, इसको आप कैसे बयान करेंगे, लिखेंगे कैसे?
लिखें, जो भी समझ में आए लिखें। देखें आपका जब तक लिखने में फ्लो नहीं बनेगा, लिखने से फ्लो बनता है। देखें ना, सीधी सी बात है, हजूर मुर्शिद करीम ने बताया कि मैंने इतनी डायरियां, मैं मुर्शिद की बातें सुनता था तो डायरियों में लिखता था। गौर करें, अब अगर हम उनकी इस बात को कॉपी करें और अब्बा की सुनी हुई बातें जो आपने वीडियोस में सुनी हैं, जो उनकी ऑडियोज में सुनी हैं या उनकी तहरीरों में पढ़ी हैं, उसको लिखें। याद है मैंने आपसे इल्तजा की थी कि मकतूबे गरामी अपने हाथ से लिखें। मैंने अर्ज किया था रूहानी इलाज किताब का पेशे लफ्ज अपने हाथ से लिखें। मैंने अर्ज किया था कि रंग और रोशनी का बाब अव्वल अपने हाथ से लिखें। और तीनों का बताया था कि मकतूबे ग्रामी लिखने से आपकी रूहानी असास ठीक हो जाएगी और रूहानी इलाज का पेशे लफ्ज नवेश्त करने से, लिखने से आपको यकीन का पैटर्न हासिल होगा। और रंग और रोशनी से इलाज का बाब अव्वल लिखने से आपको कायनाती निजाम किस तरह से रोशनियों से बना है, रंगों से बना है, वो पूरी बात समझ में आ सकती है। ये मैंने अर्ज किया था, बारहा अर्ज किया लोगों से, दोस्तों से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से कि भाई प्लीज ये तीन काम जरूर करें। लिखना है, आप अपनी कैफियत लिखेंगे तो आपको अपने जहन का पता चलेगा, ठीक हो गया?
बहुत शुक्रिया सर। मैं मक्तूबे ग्रामी मैंने लिख चुकी हूँ, बस थोड़ा सा बाकी रह गया।
कोई बात नहीं, जब आप इसे लिखने के बाद बार बार पढ़ेंगे तो उसकी गिरहें खुलेंगी, उसकी राज खुलेंगे, उसमें बड़ी गहराई है।
अच्छा सर, एक चीज पूछना है कि जैसे इज्तिमाई मुरासबा हो रहा है, उसमें कोई बहन भाई सो गए हैं, मुरासबा खत्म हो गया, वो सो गया है, हाँ, किसी जोड़ा है तो
कुछ नहीं भाई, उनकी देखें वो गनूद की कैफियत में गए और गनूद के बाद वो सचमुच सो गए, ठीक है? गनूद के बाद विरूद और शहूद की तरफ नहीं जा सके तो उनकी शौरी कमजोरी है और क्या। अब जाहिर है इस बात पे उनको बुरा तो नहीं कहा जा सकता ना, कोशिश तो की उन्होंने। मैं खुद पहले शुरू में खराटे लेता था बकायदा, मुझे ठोके मारते थे वो मेरे दोस्त थे वो न्याज, वो बकायदा कोनी से मेरी पसलियों में जोर की ठोक देते थे कि क्या कर रहा है, तेरे तो खराटे निकल रहे। देखें हम जब शऊर सस्पेंड होता है ना तो हो जाता है, अब रफ्ता रफ्ता वो प्रैक्टिस करने से, मश्क करने से वो काबू पा लेते हैं। अब जो कर रहे हैं वो उनको आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, वो बेचारे शऊर में थोड़े रहे। कोई बात नहीं, अगर अगर तो ऐसा दोस्ताना है कि आप कोनी मार के जगाएं तो बुरा नहीं मनाएंगे, तो कोनी मार दें, अदरवाइज डोंट बॉदर, आप अपने मुराकबे पे तवज्जो दें।
इसलिए पूछा कि उसका कहना था कि इसको सुकून मिलता है,
बिल्कुल सही। अब देखे ना, ये भी एक अलामत है, ये सुकून मिलना कि ज़हन जो है वो दुनिया के झमेलों से आजिज आ गया है, इसलिए वो सुकून में चले गए। लेकिन जब सुकून में जाके बंदा गौर करे तो फिर हकायक वाज़े होते हैं। ये राज की बात है, इसीलिए तो देखे ना हजूर सलाम उस वक्त उस जमाने में, आप गौर करें, ट्रैफिक का कोई शोर नहीं था, ज्यादा से ज्यादा क्या था, घोड़े की वो दौड़ की वो ठप ठप होती थी या ऊंट के चलने की तो आवाज ही नहीं होती, और वो आबादी से दूर के आवाज ना आए। ये हजूर मुशरे करीम ने एक बात फरमाई, कहने लगे रोशनी और आवाज रूहानियत की दुश्मन है। गौर करें, हम आवाजों में ही घिरे हुए या मोबाइल की रोशनियों में घिरे।
बिल्कुल, मोबाइल वो डायरियां खत्म होगी मोबाइल में लिखते रहे।
पहले मैंने इसीलिए अर्ज किया कि अगर हम थोड़ी सी थोड़ा सा वक्त दें, एक आध घंटा निकालें, वक्त निकालें और डायरी लिखें, अपनी कैफियत लिखें तो सही, इससे थॉट्स का फ्लो जो है वो कायम हो जाता है, थॉट्स का फ्लो बन जाता है, वो जो सप्रेस्ड थॉट्स होते हैं वो भी सरफेस पे आ जाते हैं। ये जिन ख्यालात को हम सप्रेस करते हैं वही तो डिप्रेस करते हैं हमें। हम सप्रेस करने में लगे होते हैं, लोग कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं कहता हूँ आप सप्रेशन न किया करें ना। ठीक हो गया जी? काफी है या क्या है कोई और सवाल?
ये अंदर में उतरते उतरने का जो लोग इस्तेमाल करते हैं अंदर में उतरना, ये भी इसी तरह है स्टेयर्स डाउन, ये रकबा किसी उसको कह सकेंगे?
जी हाँ,
फको
रकबा, गर्दन को आजाद करना कुरान में है, फको रकबा, गर्दन का आजाद करना, यानी जब आप अपने ख्यालात की गिरफ्त से आजाद होकर अल्लाह की बात को समझने के चक्कर में पड़ जाए तो ये गर्दन आजाद हो। यानी जब आप गौर व फिक्र करते हुए अपनी शौरी सकत से बढ़कर सोचने लगे तो ये फको रकबा कह रहा। जरा गौर करें मैं क्या कह गया, शौरी सकत से ज्यादा सोचना। मैंने क्या अर्ज किया कि जो भी ख्याल आए उनको आने दीजिए, गुजरने दीजिए, कोई चेक ना करें, नोट करें, चेक ना करें, और करें। जब आने वाले ख्यालात को आप आने दें और गुजरने दें, आने दें और गुजरने दें, आने दें और गुजरने दें, और नोट करते जाएं, अच्छा मुझे ये ख्याल भी आया, ये भी आया, ये भी आया, हाँ ये अच्छा था, ये बुरा था, बाद में हुक्म लगाएं। जब ख्याल आ रहा हो तो कोई हुक्म ना लगा, लेकिन जब ख्याल आ जाए तो फिर ये तय करें कि ये डूज एंड डोंट्स के मुताबिक है या उससे टकरार है। बस ये चक्कर है सारा, इसी को तकवा कहते हैं। अगर आप अपने ख्यालात को फिल्टर करना सीख गए, इसी का नाम तकवा है।
शौरी
सकत से बढ़कर ख्याल आए, ये किस तरह? मतलब है, देखे ना, हमारा एक मादी जोन है, हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपने जेनी सत्ता के मुताबिक सोचते हैं, अपनी सकत के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं होता कि एक ख्याल आता है जो कि एलियन फील होता है, यानी कि आप कहते हैं यार ये तो मैंने पता नहीं, ये नई बात मेरे समझ में आई। कहते हैं ना, ये जो नई बात का समझ में आना है, ये गोया आप अपनी शौरी सकत से हटकर सोच रहे हैं। फकीर के पास जाते हैं, अपन ने फरमाया भाई लोग सिनेमा ना गए, फिल्म पे नहीं गए तो फकीर से मिलने चले जाते हैं कि कोई नई बात सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हर लहजा ही नई बात सोच रहा होता है, वो नई ही बात बयान कर रहा होता है, कोई नया ही एंगल। आप अब्बा की तहरीरें पढ़ें, हर बात एक नया जाविया होता होता है या नहीं? हमारी और आपकी सोचों में ऐसे नए नए जाविये आते हैं? چلے رہتی ہے بات کی. اللہ خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ.
اللہ
حافظ.
اللہ حافظ.